मैं कल 173 तक किया, 74 तक किया था, तो ठीक है हम आज 173 से शुरू कर रहा हूँ। प्रभुर शरीर जेन शुद्ध हिमाचल, भाव पुष्प क्रम ताहे पुष्पित सकल। महाप्रभु का शरीर दिव्य हिमालय पर्वत जैसा लगने लगा, जिसमें भावों के वृक्ष उगे हो और ये सारे वृक्ष फूल रहे हो। देखिते आकर्षय सबार चित्त मन, प्रेमामृत वृष्टे प्रभु सिंचे सबार मन। इन लक्षणों को देखकर हर एक का मन तथा चित्त आकृष्ट हो रहे थे। महाप्रभु ने हर एक के मन को भगवत प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया। जगन्नाथ सेवक जत राजपात्र गण, यात्रिक लोक नीलाचल वासी जत जन। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों, सरकारी अफसरों, यात्रियों, सामान्य जनता तथा जगन्नाथपुरी के निवासियों के मनों को सिंचित किया। प्रभुर नृत्य प्रेम देखी हय चमत्कार, कृष्ण प्रेम उछलिल हृदय सवार। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य तथा भाव प्रेम को देखकर सारे लोग चकित थे। उन सबों के हृदयों में कृष्ण प्रेम का उछाल होने लगा। प्रेमे नाचे गाए लोग करे कोलाहल, प्रभुर नृत्य देखी सबे आनंदे विह्वल। हर व्यक्ति भाव प्रेम में नाचने और गाने लगा तथा कोलाहल उठने लगा। हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर दिव्य आनंद से अभिभूत हो गया। अन्नेर की काये जगन्नाथ हलोधर, प्रभुर नृत्य देखी सुखे चलिला मंथर। अन्नों की जाने दो, अन्नों की जाने दे, जगन्नाथ तथा बलराम तक श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर परम प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। कोभु सुखे नृत्य रंग देखे रथ राखी, से कौतुक जे देखिल सेई तार साक्षी। जगन्नाथ तथा बलराम कभी कभी रथ रोक देते और प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु का नृत्य देखने लगते। जो कोई भी उन्हें रुक कर नृत्य करने देख सका, वो उनकी लीलाओं का साक्षी है। एई रूपे एई मतो प्रभु नृत्य करिते भ्रमिते, प्रताप रुद्रे रागे लागिला पड़िते। जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच तथा घूम रहे थे तो वे महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिर पड़े। संभ्रमे प्रताप रुद्र प्रभु के धरिल, ताहाके देखिते प्रभुर बाह्य ज्ञान होइल। महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े सम्मान से महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई। राजा देखी महाप्रभु करें धिक्खार, छिछि विषय स्पर्श होइल आमार। राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को ये कहकर धिक्कारा, छी मुझे लानत है कि मैंने ऐसी व्यक्ति को स्पर्श कर लिया जो सांसारिक मामलों में रुचि रखता है। आवेशिते नित्यानंद ना होइला सावधाने, काशीश्वर गोविंद आछिला अन्य स्थाने। जब चैतन्य महाप्रभु गिरे तो न तो नित्यानंद प्रभु ने न ही काशीश्वर या गोविंद ने परवाह की। नित्यानंद अत्यधिक आवेश में थे और काशीश्वर तथा गोविंद अन्यत्र थे। जद्यपि राजार देखी हरिर सेवन, प्रसन्न हइयाछे तारे मिलिबारे मन। श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा के व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि उसने जगन्नाथ जी के लिए झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया था। अतः असलियत में महाप्रभु राजा को देखना चाहते थे। तथापि आपन गणे कोरिते सावधान, बाह्य किछु रसाभास कोइल भगवान। तथापि अपने संगियों को आगाह करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से रोष प्रकट किया। प्रभुर बचने राजार मने हईल भय, सार्वभौम कहे तुमि ना कर संशय। महाप्रभु द्वारा बाहरी रोष दिखाए जाने पर राजा प्रताप रुद्र भयभीत हो गया, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आप चिंता न करें, तुमार ऊपर प्रभुर सुप्रसन्न मन, तुमा लक्ष्य करी शिखाए निज जान। महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं, वे आपके लक्ष्य करके अपने संगियों को शिक्षा दे रहे थे कि संसारी लोगों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अवसर जानी आमी करिब निवेदन, सेई काले जाई करी हो प्रभुर मिलन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपकी फरियाद प्रस्तुत करूंगा, तब आपको आकर महाप्रभु से मिलना आसान होगा। तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिण करिया, रथ पाछे जाई ठेले रथे माथा दिया। जगन्नाथ की प्रदक्षिण करके, जगन्नाथ के प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और अपने सिर से रथ को ढकलने लगे। ठेलीते ही चलिल रथ हर हर करी, चतुर्दिके लोक सब बोले हरि हरि। उनके ढकलेते ही रथ घर घर के आवाज करके चल पड़ा। चारों ओर के लोग भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। तभी प्रभु निज भक्तगण लइया संगे, बलदेव सुभद्राग्रे नृत्य करे रंगे। जैसे ही रथ चल दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों को बलराम तथा सुभद्रा के रथों के समक्ष ले गए। वे सब प्रेरित होकर उनके समक्ष नाचने लगे। ताहा नृत्य करी जगन्नाथ आगे आईला, जगन्नाथ देखी नृत्य करीते लागिला। बलदेव तथा सुभद्रा के समक्ष नाच चुकने के बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष आए और उन्हें देखकर पुनः नाचने लगे। चलिया आईलो रथ बालगंडी स्थाने, जगन्नाथ रथ राखी देखे दाहिने बामे। जब वे बालगंडी स्थान पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ ने अपना रथ रोक दिया और दाहिने बाएं देखने लगे। बामे विप्र शासन नारिकेल बन, दाहिने तो पुष्पोद्यान जैन वृंदावन। भगवान जगन्नाथ ने बाई और ब्राह्मणों की पड़ोस विप्र शासन और नारियल का बगीचा देखा। दाहिने ओर उन्होंने वृंदावन के जैसे सुंदर पुष्पोद्यान देखे। आगे नृत्य करे गौर लइया भक्तगण, रथ राखी जगन्नाथ करे दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगी रथ के सामने नाच रहे थे और जगन्नाथ जी अपना रथ रोक कर उनका नाचना देखने लगे। सेई स्थल भोग लागे आछय नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। जगन्नाथ को विप्रशासन नामक स्थान पर भोजन प्रदान किए जाने की प्रथा थी। उन्हें असंख्य व्यंजन प्रदान किए जाते थे और जगन्नाथ जी उन सबों का आस्वादन करते थे। जगन्नाथेर छोटो बड़ो जत भक्तगण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। जगन्नाथ जी के सभी तरह के भक्तों ने, नवदीक्षित से लेकर बड़े बड़े भक्तों तक ने अपना अपना सर्वोत्तम भोजन भगवान को अर्पित किया। राजा राज मोहिषी वृंद पात्र मित्रगण, नीलाचल वासी जत छोटो बड़ो जन। इसमें राजा, उनकी रानियां, उनके मंत्री तथा मित्र और जगन्नाथ पुरी के छोटे बड़े निवासी सम्मिलित थे। নানা দেশের দেশি যত যাত্রিক জন নিজ নিজ ভোগ তাহা করে সমর্পণ। বিভিন্ন দেশ সে জগন্নাথ পুরী আয়ে হুয়ে দর্শকো তথা স্থানীয় ভক্তো নে জগন্নাথ জি কো আপনে হাথো সে পকায়া হুয়া ভোজন অর্পিত কিয়া। ये रथ यात्रा में ये एक प्रथा है, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ सुभद्रा और बलराम जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं तीन रथ में, और रास्ता में एक स्थान आता है जो जिसका वो जिसे बालगंडी कहा जाता है। तो बालगंडी में जगन्नाथ का रथ ठहरता है, वहाँ सारे भक्त जगन्नाथ को अपने पकाया हुआ भोग और निवेदन करने का अवसर मिलता है, इसका ही वर्णन यह हो रहा है। तो बालगंडी में रथ रोका, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा सारे भोग ग्रहण कर रहे हैं। আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান বনে, যেই যাহা পায় লাগায় নাহি কো নিয়মে। ভক্তনে রথকে আগে আর পিছে, রথকে দোনো ওর আর পুষ্পোদ্যান কে ভিতর সবই জগহ আপনা ভোজন অর্পিত কিয়া। रथ में तो इतना भोग नहीं दिया जाएगा, दे सकते हैं सब तो रथ का ऊपर भोग नहीं लगा सकते हैं, तो जहाँ भी रथ के सामने जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ ही उन्होंने भोग लगाते हैं, जहाँ और जगन्नाथ उस भोग को ग्रहण करते हैं। भोगेर समय लोकेर महाभीर होइलो, नृत्य छाड़ी महाप्रभु उपवने गेलो। भोजन अर्पित करते समय बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई, तब महाप्रभु ने अपना नाच रोक दिया और वे पास के बगीचे में चले गए। वहाँ जैसा वर्णन है, बायां और ब्राह्मणों का रहने का स्थान है, गांव था जिसका नाम था विप्रशासन, और वहाँ नारियल का वन था, और दाहिना और एक उपवन था, बगीचा था, जो बगीचा एकदम वृंदावन जैसा था। तो जब ऐसे सब भोग लगा रहे थे तो तब चैतन्य महाप्रभु वो बगीचा में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गए। प्रेमावेशी महाप्रभु उपवन पाइया, पुष्पोद्याने गृहपिंडाय रोहिलो पड़िया। श्री चैतन्य महाप्रभु बागीचे में चले गए, वहाँ वे प्रेमावेश में निमग्न होकर चबूतरे पास लेट गए। नृत्य परिश्रमे प्रभुर देहे घन घर्म, सुगंधि शीतल वायु करेन सेवन। महाप्रभु नाचने के कठोर श्रम से अत्याधिक थके थे और उनके सारे शरीर में पसीना था, अतएव उन्होंने बगीचे के सुगंधित शीतल वायु का आनंद उठाया। जत भक्त कीर्तनिया आशिया आरामे, प्रतिवृक्ष तले सब करें विश्रामे। संकीर्तन करने वाले सारे भक्त भी वहां आ गए और उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। एई तो कहिलो प्रभुर महासंकीर्तन, जगन्नाथेर आगे जोइछे कोरिलो नर्तन। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए महासंकीर्तन का वर्णन किया, जिस तरह वे जगन्नाथ जी के समक्ष नाचे। रथाग्रते प्रभु ओइछे कोरिला नर्तन, चैतन्याष्टकी रूप गोस्वाई कोरियाछे वर्णन। श्रील रूप गोस्वामी ने चैतन्याष्टक नामक अपनी स्तुति में महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ के रथ के समक्ष नाचने का विस्तृत वर्णन किया है। रथारूढ़ साराधी রথারূঢ়সাদ অধিপতি অধিপদবী নীলাচল পতে রথ রথগ্র প্রেমর্মী স্ফুরিত নটন্নোলস লাশ বিবশ সহস্র গায়দ্ভি পরিবৃত ননুর্বৈষ্ণব তনুর্বৈষ্ণব জনৈ সচৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশয়োস্তি পদম দৃশোর্জাশ্যতি পদম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে রথারূঢ় নীলাচল স্বামী ভগবান জগন্নাথ কে সমক্ষ প্রমুখ মার্গ মে পরম প্রসন্নতা পূর্বক নাচ কিয়া। নাচনে কে দিব্য আনন্দ সে অভিভূত হোকর তথা নামোচ্চার করনে বালে বৈষ্ণব সে ঘিরে মহাপ্রভু নে ভগবত প্রেম কি লহরে প্রকট কি। এসে মহাপ্রভু কব মেরে সমক্ষ পুনঃ দৃষ্টিগোচর হোঙ্গে। ইহা যেই শুনে সেই শ্রী চৈতন্য পায় সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেম ভক্তি হয়। যো ভি রথযাত্রা কে ইস বিবরণ কো সুনতা হ্যায় উসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রাপ্ত হোঙ্গে, উসে ও উচ্চ অবস্থা ভি প্রাপ্ত হোঙ্গি জিসে উসে ভগবত ভক্তি তথা ভগবত প্রেম মে দৃঢ় বিশ্বাস প্রাপ্ত হোগা। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। শ্রীরূপ তথা শ্রী রঘুনাথ কে চরণ কমলো কে প্রার্থনা করতে হুয়ে ওর উনকি কৃপা কি কামনা করতে হুয়ে উনকা অনুচর মায় কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কা বর্ণনা কর রহা হুঁ। ইস প্রকার শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য লীলা কে তেরহবে অধ্যায় কা ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য পূর্ণ হুয়া জিসমে জগন্নাথ কি রথযাত্রা কে অবসর পর মহাপ্রভু কে ভাবময় নৃত্য কা বর্ণন হুয়া হ্যায়। অধ্যায় চৌদহ বৃন্দাবন লীলাও কা সম্পাদন। ইস অধ্যায় কা সারাংশ এসে বর্ণন হুয়া হ্যায়। মহারাজ প্রতাপ রুদ্র এক বৈষ্ণব কা বেশ ধারণ করকে অকেলে এক বগিচে মে গয়ে ওর শ্রীমদ ভাগবত কে শ্লোক বাঁচনে লগে। ফির উনহোনে মহাপ্রভু কে চরণ কমল দবায়ে। মহাপ্রভু নে আপনে কৃষ্ণ প্রেমাবেশ মে রাজা কো আলিঙ্গন কর লিয়া ওর ইস তরহ উসে আপনি কৃপা কা দান কিয়া। জব বগিচে মে প্রসাদ বাঁটা গয়া তো মহাপ্রভু নে ভি ভাগ লিয়া। ইসকে বাদ জব জগন্নাথ জি কা রথ চলতে চলতে রুক গয়া তো রাজা প্রতাপ রুদ্র নে উসে খিঁচনে কে লিয়ে কোই হাতি মগায়ে কিন্তু ওয়ে অসফল রহে। ইয়ে দেখ কর মহাপ্রভু নে রথ কে পিছে সে আপনি শির সে ঠেলা তো ও রথ চলতে চলনে লগা। তব ভক্তো নে রথ কো রসো সে খিঁচনা শুরু কিয়া। গুন্ডিচা মন্দির কে পাশ হি আই টোটা নাম কা স্থান হ্যায় যাহা পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে বিশ্রাম কি ব্যবস্থা কি গই থি। জব জগন্নাথ জি সুন্দরাচল পর আরূঢ় হো গয়ে তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে ইসে বৃন্দাবন কি রূপ মে দেখা। উনহোনে ইন্দ্রদুম্ন সরোবর কে জল মে ক্রীড়ায় কি। মহাপ্রভু রথযাত্রা কে সময় নৌ দিনো তক লগাতার জগন্নাথ পুরী মে রহে। পাঁচবে দিন মহাপ্রভু তথা স্বরূপ দামোদর নে লক্ষ্মী কি লীলায় দেখি। উস সময় গোপীয় কি লীলাও কি বড়ি চর্চা হতি রহি। জব রথ পুনঃ খিঁচা জানে লগা ওর কীর্তন শুরু হো গয়া তো কুলিন গ্রাম কে রামানন্দ বসু তথা সত্যরাজ খান সে অনুরোধ কিয়া গয়া কি ওয়ে প্রতিবর্ষ রথযাত্রা উৎসব কে লিয়ে রেশমি রস্যে লাতে রহে। গৌর পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈ শ্রীলক্ষ্মী বিজয়োৎসবম শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টপ্রেম্ণা ননর্তসঃ। আপনে ভক্তকে সাথ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লক্ষ্মী বিজয়োৎসব মে গয়ে वहां उन्होंने गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम की चर्चा की। इन सबों को सुनने से ही वे परम प्रसन्न हुए और भगवत प्रेम से अभिभूत होकर खूब नाचे। जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद जयाद्वैत धन्य। गौरचंद्र नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, परम धन्य अद्वैत आचार्य की जय हो। जय जय शिवासादि गौर भक्तगण, जय श्रोता गंजार गौर प्राणधान। श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो, उन सारे पाठकों की जय हो जिनके प्राण धन श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। एई मतो प्रभु आछेन प्रेमेर आवेशे, हेनकाले प्रताप रुद्र करिल प्रवेशे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर विश्राम कर रहे थे, तभी प्रताप रुद्र बागीचे के भीतर प्रविष्ट हुए। सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राज बेश, एकोला वैष्णव बेशे करिल प्रवेश। सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेश अनुसार राजा ने अपना राजसी बेश छोड़ दिया और अब वो वैष्णव बेश में बगीचा में प्रविष्ट हुए। सब भक्तेर आज्ञा निल जोर हाथ होइया, प्रभुपद धरि पड़े साहस करिया। महाराज प्रताप रुद्र इतने विनित थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी, तब साहस बटोरकर वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। आखि मुदी प्रभु प्रेमे भूमिते शयान, नृपति नैपुण्य करे पाद संवाहन। महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मुदे भूमि पर लेते थे और राजा बड़ी निपुणता से उनके पाँव दबाने लगा। ये भगवान के पास किस भावना लेकर जाना है, इसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ हो रहा है। यद्यपि भौतिक दृष्टिकोण से एक राजा बहुत बड़े आदमी होते हैं, राजा मतलब वो राज्य में सबसे प्रधान व्यक्ति है, वो बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राजा एक बहुत गिरे हुए आदमी है। क्यों? क्योंकि राजा भौतिक विषय में इतना मगन रहते हैं, राजा होने के कारण वो इसलिए महाप्रभु प्रताप रुद्र को दर्शन नहीं दिए थे। प्रताप रुद्र यद्यपि उड़ीसा के राजा थे, भक्त भी थे, बल्कि महाप्रभु शिक्षा देने के लिए, क्योंकि जो विषयी हैं, जो भौतिक विषय में मगन रहता है, जो लोग भौतिकवादी, जो विषय के प्रति आसक्त रहते हैं जो व्यक्ति, उनका संगत साधुओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग का प्रभाव बहुत ही कठोर होता है। संग का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है। साधु के संग होने से सद्गुण का वृद्धि होता है और असाधुओं के संग होने से असद्गुण का समावेश होता है। इसलिए साधुओं को असत संग नहीं करना चाहिए। असत संग कौन है? असत संगी होता है विषयी, जो भौतिक विषय में जो मगन रहता है, वो है एक प्रकार का असत संग। कल मैं भागवतम क्लास में इसका विचार कर रहा था। भीष्म देव यद्यपि इतने महान व्यक्ति थे, गंगा के पुत्र, स्वर्गलोक में उनका बचपन गुजारा था, परशुराम उनका गुरु था, अस्त्र शिक्षा गुरु, और बचपन से वो ब्रह्मचारी का युवावस्था में वो ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा किए थे। कितने महान व्यक्ति थे, बल्कि उनको भी दुर्योधन के संग के प्रभाव से उनका भी मन का, उनका भी चेतना भ्रष्ट हो गया था, नष्ट विनष्ट हो गया था। और महाभारत में वर्णन है कि असुरों ने उसको प्रभावित किया था युद्ध के समय, असुरों ने उसका शरीर में प्रवेश कर लिया था। ऐसे इसका वर्णन हुआ है उद्योग पर्व में, असुरों ने दुर्योधन को आश्वासन दिया था कि भीष्म को भी प्रभावित करके करेंगे उन लोगों ने। यद्यपि इतने महान व्यक्ति थे, फिर भी दुर्योधन जैसे पापी के संग होने के कारण उन्होंने भी प्रभावित हो गए थे। तो इसलिए साधुओं को राजा जो है, राजा सबको ही पता है कि राजा जो होता है वो इंद्रिय तर्पण करने में मगन रहता है, उसको इंद्रिय तर्पण करने का लाइसेंस भी दिया जाता है, ये क्षत्रिय का एक लाइसेंस है कि वो इंद्रिय तर्पण कर सके। बल्कि जो साधु हैं उनको इसलिए राजाओं के साथ संग नहीं करना चाहिए। ये एक श्लोक यहाँ आया है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, ये निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगीमिषोर् भवसागरस्य दर्शनं विषयिनाम् अथ जोषितां च हा हन्त हन्त विषभक्षणोतोप्या साधु। निष्किंचनस्य शब्द में उस व्यक्ति का सूचक है जिसने अपने सारे भौतिक कार्यकलाप समाप्त कर लिए हैं। निष्किंचन का मतलब जो सारे भौतिक कार्य का समाप्त कर चुके हैं, मतलब भौतिक जगत में जिसका और कोई संपर्क नहीं है, भौतिक जगत के साथ जिनका कोई संपर्क नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए भवसागर पार जाने के लिए कृष्ण भावनामृत में अपने कार्यकलाप संपन्न कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी संसारी व्यक्ति से घनिष्ठ संपर्क संबंध स्थापित करना अथवा किसी स्त्री से घनिष्ठ संपर्क रखना अत्यंत घातक सिद्ध होता है। ये औपचारिकता भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को निभानी पड़ती है। इसलिए जब राजा से उनका स्पर्श हुआ तो महाप्रभु ने अपने संगियों को इन सिद्धांतों को समझाने के लिए बाहर से रोष प्रकट किया। क्योंकि महाप्रभु राजा के विनित आचरण से अत्यंत संतुष्ट थे, अतएव उन्होंने जानबूझकर राजा को अपना शरीर स्पर्श करने दिया, किंतु अपने संगियों को आगाह करने के लिए उन्होंने बाहर से रोष व्यक्त किया। और जो भक्त होना चाहते हैं, जो भगवत भक्ति प्राप्त होना चाहते हैं, उनका मनोभाव कैसा होना चाहिए, चाहे वो राजा भी हो और कोई भी हो, अपने आप को अत्यंत विनम्र भाव से अपने आप को भगवान के समक्ष, भगवान के भक्तों के पास हम समर्पण करना। इसलिए हम देख रहे प्रताप रुद्र यद्यपि राजा हैं, फिर कितना विनम्र भाव से महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु के भक्तगण जो सामने आसपास थे उनको प्रणाम करके उनको अनुमति ले लिया, लेकर महाप्रभु के पैर दबाने लगे, महाप्रभु के सेवा करने लगे। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं हमको कौन रोकेगा। भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत का विचार से राजा सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि आध्यात्मिक विचार से राजा सबसे नीचे है। महाप्रभु किसी को इनकार नहीं किए थे, महाप्रभु सबको ही ग्रहण किए थे, महाप्रभु सबको बुलाते थे, महाप्रभु सबको पास जाकर भगवत भक्ति ग्रहण करने के लिए अनुरोध करते थे। बल्कि प्रताप रुद्र के बारे में ऐसे महाप्रभु शुरू शुरू में उनको इनकार कर दिया, त्याग दिया, नहीं। और प्रताप रुद्र का भी मन में अभिमान हुआ था, उन्होंने बताया क्या चैतन्य महाप्रभु सारा जगत को उद्धार करने के लिए आए हैं, सारे पापी तापी को उद्धार करने के लिए आए हैं, केवल प्रताप रुद्र को ही उन्होंने उद्धार नहीं करेंगे, ये क्या उन्होंने प्रतिज्ञा किया है। और आप ये महाप्रभु के लीला के द्वारा अपने भक्तों के साथ लीला विलास करते हुए महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो हमें कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे मनोभाव पोषण करना चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ प्रताप रुद्र कितना विनम्र भाव, राजा होते हुए भी एक साधारण वैष्णव का वेश ग्रहण करके राजा जहां भी जाते हैं उनके साथ साथ हजारों लोग चलते हैं, उनके मंत्री जाते हैं, सेनापति जाते हैं, बॉडीगार्ड्स रहते हैं, ये सब कितने आदमी उनके साथ चलते हैं, बल्कि यहाँ अकेला आए हैं वैष्णव वेश धारण करके, मतलब सादा धोती कपड़ा पहन के, धोती चद्दर कपड़ा भी नहीं, धोती और चद्दर पहन के तिलक लगा के कंठी माला लेके आए वहाँ और महाप्रभु के चरण कमल का सेवा करना शुरू किया। और तब और क्या, सब भक्तेर आज्ञा निलो जोड़ हाथ होइया प्रभु पद धोरी पड़े साहस करिया। महाराज प्रताप रुद्र इतने विनित थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी, तब साहस बटोरकर वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मूंदे भूमि पर लेटे थे और राजा बड़ी निपुणता से उनके पाँव दबाने लगा। रासलीलार श्लोक पूरी करें स्तवन जयतीतेधिकं अध्याय करें पठन। जब श्रीमद् भागवत से रासलीला विषय श्लोक पढ़ कर सुनाने लगा, उससे जयतीतेधिकं से प्रारंभ होने वाला अध्याय पढ़ा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद अध्याय 31 के ये श्लोक गोपी गीता के नाम से विख्यात है। सुनीते सुनीते प्रभुर संतोष अपार बोलो बोलो बोली प्रभु बोले बार बार। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों को सुने जब श्री चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों को सुना तो वे असीम प्रसन्न हुए और बारंबार कहने लगे, सुनाते रहो सुनाते रहो। तबो कथामृतम श्लोक राजा जे पड़िलो उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिंगन कोइलो। जो ही राजा ने तबो कथामृतम वाला श्लोक पढ़ा कि महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आकर उठे और उसे आलिंगन कर लिया। तुमि मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, मोर किछु दिते नाही दिलु आलिंगन। राजा द्वारा सुनाए गए श्लोक को सुनकर महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूं। एतो बोली सेई श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार। ये कहकर महाप्रभु उसी श्लोक को बारंबार पढ़ने लगे। राजा तथा महाप्रभु दोनों ही कांप रहे थे और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कोबिभीर ईडितम कल्मशापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भूमि गृहंती जे भूरिदा जना। हे प्रभु, आपकी वाणी का अमृत तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत से संतप्त प्राणियों के लिए प्राण तुल्य है। ये कथाएं महापुरुषों द्वारा संप्रेषित की जाती हैं और पापों को नाश करने वाली हैं। जो भी इन कथाओं को सुनता है और उससे सौभाग्य प्राप्त होता है ये कथाएं विश्व भर के प्रसारित होती हैं और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती हैं। जो लोग ईश्वर के संदेश का विस्तार करते हैं वे निश्चय ही दानी कल्याण करता है। ये श्लोक सबको याद है, तो हम ये थोड़ा गाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कोबिभीरितम कल्मषापहम। तप्त जीवनम कोबिभीरितम कल्मषापहम् श्रीमदाततम् भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदा অবকথামৃতাম তপ্ত জীবনাম কবিভিরীরিতাম কল্মষাপাম।
গৌর প্রেমানন্দে।